नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हो गई है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो बैठक की अध्यक्षता की। डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संयुक्त आयोग की बैठक 4 साल के अंतराल के बाद हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने पिछले वर्ष द्विपक्षीय संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे करने का उत्सव मनाया है। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया। गृहमंत्री की अध्यक्षता में बीएसएफ के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया।
गृहमंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है। श्री शाह ने जिला अधिकारियों और वस्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली मुद्रा का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। बैठक में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा, मुख्य सचिव जेके सिन्हा, पुलिस महानिदेशक अनुराग और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी 8 सीमावर्ती जिलों के जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित थे।
सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारत में सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ता है और अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी कम है। वहीं आज घरेलू रसोई गैस की कीमत में 29 रुपए की वृद्धि की गई है। दिल्ली में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 942 रुपए हो जाएगी। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पोर्टल मध्यरात्रि तक खुला रहेगा। यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल कल 2 दिवसीय दौरे पर असम में गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल शामिल हैं। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से हुर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कल रात कोच्चि में निधन हो गया। वे 57 वर्ष के थे। उनका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। सलीम कुमार ने शुरू में मिमिक्री स्टेज और टेलीविजन कॉमेडी शो से अपनी पहचान बनाई तथा 1996 में सिद्दीकी शमी के निर्देशन में फिल्म इस्टमानु नरवुट्टम से सिनेमा जगत में प्रवेश किया। 3 दशक के करियर में उन्होंने करीब 350 फिल्मों में काम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय महिला फुटबॉल टीम को सैफ चैंपियनशिप 2026 जीतने पर बधाई दी है। भारत ने कल गोवा के मंडगांव में खेले गए फाइनल में मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6ठी बार खिताब अपने नाम किया। उधर न्यू चंडीगढ़ में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे एकमात्र क्रिकेट टेस्ट के आज दूसरे दिन 8 विकेट पर 564 रन बनाकर पारी घोषित कर दी। ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने पहली पारी में 3 विकेट खोकर 82 रन बना लिए हैं। और मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून आगे बढ़ रहा है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों में पूरे देश में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।